मैं सुजीत कुमार, बीए थर्ड ईयर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, तुलनात्मक राजनीति और सरकार का रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अध्याय प्रथम,
क्षेत्र एवं विकास का इतिहास, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स, मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट। तुलनात्मक राजनीति से आपका क्या अर्थ है, इसके स्वरूप का वर्णन करें। राजनीति को समझने के लिए तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन बहुत आवश्यक है। वास्तव में आज तुलनात्मक राजनीति के सभी अध्ययन विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों के वास्तविक व्यवहार विश्लेषण पर विशेष बल दे रहे हैं। इसके लिए आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कई वैज्ञानिक ढंगों का प्रयोग कर रहे हैं, जैसा कि मैक्रिडिस और वार्ड लिखते हैं। तुलनात्मक राजनीति के कई ढंग या मार्ग हैं। तुलना का कार्य विदेशी धरतियों की एक निर्देशित यात्रा होती है। यह दिखाती है कि अलग अलग समाजों में रह रहे व्यक्तियों का राजनीतिक व्यवहार अलग अलग होता है। उनके राजनीतिक मूल्य एवं विचार, जिनके द्वारा वे एक दूसरे से या बाहरी संसार के प्रति सोच रखते हैं, भी भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ तक समस्याओं के समाधान के प्रति विचारों में भी विभिन्नताएँ होती हैं। तुलनात्मक राजनीति में विभिन्न समाजों में कार्य कर रही राजनीतिक व्यवस्थाओं के व्यवहारों में समानताओं और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति प्राचीन समय से भिन्न भिन्न देशों में विद्यमान राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करती आई है, परंतु जहां प्राचीन समय में तुलनात्मक अध्ययन केवल सैद्धांतिक, कानूनी, ऐतिहासिक और दार्शनिक ही होता था, वहाँ वर्तमान समय में यह अध्ययन वैज्ञानिक, व्यवहारवादी और अनुभववादी होती है। आज आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों में विद्यमान राजनीतिक संरचनाओं के वास्तविक व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और राजनीतिक सिद्धांत निर्माण का कार्य करते हैं। अरस्तु ने अपने समय के 158 ग्रीक नगर राज्यों के संविधानों का अध्ययन करके अपने राजनीतिक सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। अरस्तु के पश्चात कई विचारकों ने भी ऐसा करने का प्रयास किया। आज भी अनेक राजनीतिक वैज्ञानिक तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन कर रहे हैं, परंतु जहां परंपरागत राजनीतिक विद्वानों ने परंपरागत रूप में ही राजनीतिक संस्थाओं की शक्तियों का ऐतिहासिक, कानूनी और दार्शनिक अध्ययन किया था, वहीं आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक दुनिया के 193 देशों में विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाओं, उनकी सभी संरचनाओं और कार्यों के वास्तविक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं। आज इस नए दृष्टिकोण को तुलनात्मक राजनीति का नाम मिला है, जबकि परंपरागत स्वरूप को इसके तुलनात्मक सरकार ही कहा जाता रहा है। तुलनात्मक राजनीति, इसका अर्थ। तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक अनुभवों, संस्थाओं, संरचनाओं, व्यवहारों और सरकार की प्रक्रियाओं का व्यापक और चेतन रूप में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं के साथ साथ अनौपचारिक राजनीतिक संस्थाओं, जो कि राजनीतिक प्रक्रिया को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। वास्तव में तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संस्थाओं के व्यवहार या फिर राजनीतिक प्रणालियों के व्यवहार में समानताओं, विभिन्नताओं और नियमितताओं का वैज्ञानिक और अनुभववादी विश्लेषण किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति परिभाषा। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों का समुचित रूप में या फिर उनकी संरचनाओं और कार्यों का तुलनात्मक विश्लेषण करती है। इसमें सभी देशों में विद्यमान राजनीतिक प्रणालियों के का वैज्ञानिक, व्यवहारवादी और अनुभववादी विश्लेषण किया जाता है। ऐसे अध्ययन का उद्देश्य अपनी समझ को बढ़ाकर वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करना है। इस विषय की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग रूप में की है। एक विषय के रूप में हम राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में परिभाषित करते हैं, जिसके द्वारा समाज में बंधनकारी कानून बनाए एवं लागू किए जाते हैं। इसी आधार पर हम तुलनात्मक राजनीति को एक ऐसे विषय के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जो कि विश्व के अलग अलग भागों में विद्यमान राजनीतिक प्रक्रियाओं अथवा व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करता है, ताकि राजनीति की प्रकृति और व्यवहार के विश्लेषण के द्वारा एक प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण किया जा सके। तुलनात्मक राजनीति की प्रमुख परिभाषाएँ कुछ विद्वानों के द्वारा इस प्रकार हैं। एम कुर्टिस के अनुसार तुलनात्मक राजनीति का संबंध राजनीतिक संस्थाओं की कार्य प्रणाली और राजनीतिक व्यवहार में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण नियमितताओं, समानताओं और अंतरों से है। कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स इज कंसर्न विद सिग्निफिकेंट रेगुलरिटीज, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिटिकल बिहेवियर। वहीं बरेबैटी के अनुसार तुलनात्मक राजनीति समुचित सामाजिक व्यवस्था में उन तथ्यों की पहचान और व्याख्या है, जो कि उन राजनीतिक कार्यों और उनकी राजनीतिक संस्थाओं को प्रभावित करते हैं, जो कि तुलना के लिए चुनी और सूचीबद्ध की जाती हैं। कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स इज आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्टर्स इन द होल सोशल ऑर्डर विच अपीयर टू अफेक्ट व्हाट एवर पॉलिटिकल फंक्शंस एंड देयर इंस्टीट्यूशंस विच हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड यूज्ड फॉर कंपैरिजन। वहीं जीन ब्लॉन्डेल के अनुसार तुलनात्मक राजनीति का अर्थ समकालीन संसार में राष्ट्रीय सरकारों के वर्गों के अध्ययन का अध्ययन करना है। कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स कैन बी डिफाइंड इन ए प्रिलिमिनरी फैशन एज द स्टडी ऑफ द पैटर्न्स ऑफ नेशनल गवर्नमेंट्स इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ब्लॉन्डेल के अनुसार ऐसे अध्ययन में तीन प्रकार का अध्ययन शामिल होता है। पहला, सरकारी संरचना का अध्ययन। दूसरा, एक विशेष राजनीतिक रचना या संस्था के व्यवहार का अध्ययन। और तीसरा, कानूनों का अध्ययन, क्योंकि राजनीति के व्यवहार में जब कभी भी विरोध उत्पन्न होता है तो इसका समाधान कानून और कानून के द्वारा स्थापित की गई प्रक्रिया के आधार पर ही किया जाता है। उसके बाद तुलनात्मक राजनीति, प्रकृति, विशेषताएं। तुलनात्मक राजनीति अलग अलग समाजों में कार्य कर रही राजनीतिक प्रणालियों का विश्लेषण और तुलना करने के लिए यत्नशील रहती है। ऐसा करते समय राजनीति के संबंध में अलग अलग रूपों और अर्थों का ध्यान रखा जाता है, जैसे राजनीतिक गतिविधि, राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक गतिविधि में वे सभी गतिविधियां शामिल की जाती हैं जो विरोध के समाधान और शक्ति के लिए संघर्ष से संबंधित होती हैं। विरोध का समाधान बंधनकारी सत्तायुक्त मूल्यों के आधार पर किया जाता है। इसी कारण राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक शक्ति का अध्ययन भी किया जाता है, क्योंकि राजनीतिक प्रक्रिया में कई एक संरचनाएं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में कार्य कर रही होती हैं। इसीलिए तुलनात्मक राजनीति में इन सभी संरचनाओं और कार्यों का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही, क्योंकि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था मूल रूप में शक्ति के लिए संघर्ष की व्यवस्था होती है, इसीलिए समुचित रूप में तुलनात्मक राजनीति विभिन्न समाजों में विद्यमान शक्ति के लिए की जा रही संघर्ष प्रक्रियाओं का विश्लेषण करती है। दूसरे शब्दों में, तुलनात्मक राजनीति में जब शक्ति और सभी शक्ति संबंधों का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान समय में तुलनात्मक राजनीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, राजनीतिक व्यवस्थाओं के वास्तविक व्यवहारों का अध्ययन। तुलनात्मक राजनीति विश्व के सभी भागों में विद्यमान एवं कार्य कर रही राजनीतिक व्यवस्था के वास्तविक व्यवहार का अध्ययन करती है। सभी राजनीतिक संरचनाओं और कार्यों का स्पष्ट और वास्तविक अध्ययन करना तुलनात्मक राजनीति की प्रमुख विशेषता है। दूसरा, अनुभववादी और विश्लेषणात्मक शोध। तुलनात्मक राजनीति का विषय विश्लेषणात्मक शोध पर अधिक बल देता है। यह केवल वर्णनात्मक अध्ययन तक सीमित नहीं, यह सरकार की वास्तविक गतिविधियों, राजनीति की सभी संरचनाओं और कार्यों का तथ्यात्मक विश्लेषण करता है। यह राजनीति के वैज्ञानिक और अनुभववादी अध्ययन पर बल देता है। मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के सभी तथ्य इसके अध्ययन के मुख्य विषय हैं। तीसरा, राजनीति का वस्तुनिष्ठ अध्ययन। तुलनात्मक राजनीति में अलग अलग वातावरणों में राजनीति की प्रक्रियाओं का अनुभववादी और वस्तुनिष्ठ अध्ययन होता है। केवल उन मूल्यों को अध्ययन के लिए योग्य समझा जाता है जिनका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। इसका ध्यान इस बात पर केंद्रित होता है कि क्या है, न कि क्या होना चाहिए। यह परंपरावादी विधि के द्वारा राजनीति के अध्ययन को स्वीकार नहीं करती। इसका मुख्य उद्देश्य राजनीति संबंधी ऐसा वस्तुनिष्ठ और अनुभववादी सिद्धांत निर्मित करना है जो कि राजनीति की सभी प्रक्रियाओं की व्याख्या और तुलना करने के योग्य हों। चौथा, प्रारंभिक संरचनाओं का अध्ययन। अब तुलनात्मक राजनीति व्यक्तियों, समूहों, संरचनाओं, उप प्रणालियों और प्रणालियों के वास्तविक व्यवहार का अध्ययन करती है। अब यह केवल सरकार के औपचारिक संगठनों की कानूनी शक्तियों और कार्यों के अध्ययन से ही संबंधित नहीं होती, यह वातावरण में उनके व्यवहार का विश्लेषण करती है। किसी वातावरण में राजनीति की वास्तविक प्रक्रिया का अध्ययन करना अब तुलनात्मक राजनीति की मुख्य विशेषता है। निर्णय निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन तुलनात्मक राजनीति का अभिन्न अंग है। पाँचवा, अंतर विषयक अध्ययन। तुलनात्मक राजनीति अंतर विषयक अध्ययन मार्ग को अपनाए जाने की आवश्यकता और उपयुक्तता को स्वीकार करती है। यह राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, अर्थशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों के ज्ञान की सहायता से करने की आवश्यकता को स्वीकार करती है। छठा, विकसित और विकासशील सभी समाजों का अध्ययन। परंपरावादी रूप में जहां तुलनात्मक अध्ययन यूरोपीय विकसित समाजों की राजनीतिक प्रणालियों के अध्ययन तक सीमित था, वहां वर्तमान समय में तुलनात्मक राजनीति विकासशील समाजों के अध्ययन पर अधिक बल देती है। एक पक्षीय और संकीर्ण अध्ययन के स्थान पर विकासशील और विकसित समाजों दोनों के अध्ययन ने ले ली है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाएं संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं के समान महत्व रखती हैं। सातवां, समतल और क्षितिजीय तुलनाएं। तुलनात्मक राजनीति में अलग अलग राज्यों की राजनीतिक प्रणालियों की संरचनाओं और कार्यों की तुलना के अतिरिक्त किसी एक राज्य के अंदर विद्यमान राजनीतिक संस्थाओं की तुलना भी की जाती है। पहले प्रकार के अध्ययन के क्षितिजीय तुलनात्मक अध्ययन कहा जाता है और दूसरे प्रकार के अध्ययन को समतल तुलनात्मक अध्ययन। परंपरावादी रूप में तुलनात्मक सरकार का अध्ययन केवल समतल तुलनात्मक अध्ययन पर बल देता था, जबकि समकालीन तुलनात्मक राजनीति दोनों प्रकार के अध्ययन को समान महत्व देती है। आठवां, वैज्ञानिक सिद्धांत निर्माण एक उद्देश्य के रूप में। तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य केवल अलग अलग राजनीतिक प्रणालियों में पाई जाने वाली समानताओं और विभिन्नताओं की तुलना करना ही नहीं, बल्कि राजनीति के संबंध में सिद्धांत निर्माण करना है। आज वैज्ञानिक सिद्धांत निर्माण इसका एक उद्देश्य है। नौवां, राजनीति का अध्ययन राजनीतिक व्यवस्था के रूप में, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन करने वाले विद्वानों ने राजनीति का अध्ययन करने के लिए राजनीतिक व्यवस्था की धारणा का प्रयोग किया है। राजनीतिक व्यवस्था की धारणा को एक विश्लेषणात्मक यंत्र के रूप में स्वीकार किया गया है जो कि राजनीतिक वैज्ञानिकों को राजनीति का व्यापक यथार्थवादी और अनुभववादी अध्ययन करने में योग्य बताता है। इन सभी विशेषताओं सहित तुलनात्मक राजनीति राजनीति का एक नया विज्ञान ही है। इसने तुलनात्मक सरकारों, गैर व्यापक विषय वस्तु, औपचारिक चरित्र, कानूनी और संस्थागत अध्ययन को अस्वीकार किया है। अब तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार। तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तुलनात्मक राजनीति के स्वरूप संबंधी अधिक स्पष्टता के लिए यह आवश्यक है कि हम तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार में अंतर स्पष्ट करें। तुलनात्मक सरकार का अर्थ और परिभाषा। साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि तुलनात्मक सरकार में राज्य और राजनीतिक संस्थाओं की कानूनी शक्तियों, कार्यों और स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, या फिर औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं की शक्तियों, कार्यों, स्थितियों, गुण दोषों के अध्ययन को परंपरागत रूप में तुलनात्मक सरकार का अध्ययन कहा जाता है। जी के रॉबर्ट्स के शब्दों में तुलनात्मक सरकार राज्यों और उनकी सरकारी संस्थाओं और प्रक्रियाओं का तुलनात्मक आधार पर अध्ययन है। एडवर्ड फ्रीमैन के अनुसार तुलनात्मक सरकार सरकार के भिन्न भिन्न स्वरूपों और अलग अलग राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण करती है। परंपरागत रूप में तुलनात्मक सरकार की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित रही हैं। विभिन्न देशों में विद्यमान राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन पर बल, दुनिया के प्रमुख संविधानों के अध्ययन पर बल, राजनीतिक संस्थाओं की कानूनी शक्तियों तथा कार्यों के अध्ययन पर बल, विभिन्न देशों की राजनीतिक संस्थाओं की तुलनात्मक शक्तियों और स्थितियों का अध्ययन, औपचारिक रूप में विद्यमान राजनीतिक संस्थाओं के संगठनों और शक्तियों का अध्ययन, राजनीतिक संस्थाओं की संवैधानिक शक्तियों और कार्यों का अध्ययन, आदर्श राजनीतिक संस्थाओं के सिद्धांत का निर्माण करने का प्रयास, राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन के लिए दर्शन, शास्त्रीय इतिहास तथा कानून का प्रयोग करना तथा सबसे उत्तम राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण करना। इन सभी विशेषताओं के साथ तुलनात्मक सरकार का विषय 20वीं शताब्दी के पहले 40 वर्षों तक काफी लोकप्रिय बना रहा, परंतु इसके पश्चात बहुत से राजनीतिक वैज्ञानिक इसकी आलोचना करने लग पड़े, क्योंकि इसका क्षेत्र संकीर्ण था, अध्ययन ढंग वैज्ञानिक नहीं था और यह एक औपचारिक कानूनी संस्थागत और आदर्शात्मक अध्ययन ही था। तुलनात्मक सरकारों के अध्ययन में राजनीतिक संस्थाओं के वास्तविक व्यवहार के अध्ययन पर बल नहीं दिया जाता था और न ही वैज्ञानिक सिद्धांत निर्माण का प्रयास किया जाता था। इन त्रुटियों के कारण ही आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिकों ने तुलनात्मक सरकार के स्थान पर तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन पर बल दिया। उन्होंने तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन को व्यापक, वास्तविक, स्पष्ट, वैज्ञानिक, व्यवहारवादी और अनुभववादी बनाने पर बल दिया। उनके प्रयासों के कारण ही तुलनात्मक सरकार की तुलना में तुलनात्मक राजनीति का जन्म हुआ और यह अध्ययन का एक अत्यंत लोकप्रिय और लाभप्रद क्षेत्र बन गया। क्षेत्र में अंतर। तुलनात्मक सरकार का विषय क्षेत्र सीमित रहा है और इसमें राजनीतिक संस्थाओं और कानूनी शक्तियों पर बल दिया जाता रहा है। इसके विपरीत तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र विशाल है, जिसमें सभी संरचनाओं, औपचारिक और अनौपचारिक, सरकारी और गैर सरकारी, राजनीतिक और गैर राजनीति का अध्ययन शामिल होता है, जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सभी राजनीतिक प्रणालियों के वास्तविक व्यवहार को निर्धारित करती है। दृष्टिकोण में अंतर। तुलनात्मक राजनीति विशाल विषय क्षेत्र से अतिरिक्त दृष्टिकोण के पक्ष से भी तुलनात्मक सरकार से भिन्न है। तुलनात्मक सरकार में वर्णनात्मक अध्ययन किया जाता है, जो कि कानूनी संस्थागत परिप्रेक्ष्य और मूल्यांकन आदर्शात्मक दृष्टिकोण के अधीन किया जाता है। इसके विपरीत तुलनात्मक राजनीति में व्यवहारवादी, अनुभववादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर राजनीतिक प्रक्रियाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। संक्षेप में तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति में निम्नलिखित प्रमुख अंतर पाए जाते हैं। पहला, तुलनात्मक सरकार का विषय तुलनात्मक राजनीति के विषय से पुराना है। तुलनात्मक सरकार राजनीतिक अध्ययन का परंपरागत ढंग है, जबकि तुलनात्मक राजनीति अध्ययन का नया ढंग है। दूसरा, तुलनात्मक सरकार का अध्ययन आदर्शवादी और तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन विश्लेषणात्मक और अधिकतर मूल्य रहित होता है। तीसरा, तुलनात्मक सरकार का विषय क्षेत्र सीमित है, इसमें राज्य और औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं का ही अध्ययन शामिल होता है, जबकि तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र काफी व्यापक है, इसमें सभी राजनीतिक संरचनाओं, कार्यों और प्रक्रियाओं का अध्ययन शामिल है। तुलनात्मक सरकार का अध्ययन ऐतिहासिक, दार्शनिक, कानूनी, संस्थागत विधियों के द्वारा किया जाता है, जबकि तुलनात्मक राजनीति वैज्ञानिक और अनुभववादी ढंगों पर निर्भर करती है। तुलनात्मक सरकार अध्ययन में राजनीतिक संस्थाओं के वातावरण के अध्ययन को महत्व नहीं देती, जबकि तुलनात्मक राजनीति में वातावरण और प्रारंभिक ढांचे के अध्ययन को बहुत महत्व दिया जाता है। हम तुलनात्मक राजनीति के बारे में माइकल कर्टिस के विचारों का अध्ययन करके तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति में विद्यमान अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं। तुलनात्मक राजनीति का संबंध राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक व्यवहार में विद्यमान महत्वपूर्ण नियमितताओं, समानताओं और भिन्नताओं से है। यह अध्ययन के वैज्ञानिक ढंग का प्रयोग करती है। दूसरी और तुलनात्मक सरकार राज्य की राजनीतिक संस्थाओं का वर्णनात्मक और सैद्धांतिक अध्ययन ही करती है। अब तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र। परंपरावादी रूप में तुलनात्मक सरकार का विषय क्षेत्र बहुत सीमित और संकीर्ण रहा है। यह केवल संविधानों और राजनीतिक संस्थाओं के लक्षणों, शक्तियों और स्थितियों के अध्ययन तक सीमित रहा है। यह अध्ययन संकीर्ण इसलिए है क्योंकि यह केवल यूरोपीय संविधानों के अध्ययन तक ही सीमित रहता है। ब्रिटिश संविधान को मातृ संविधान का दर्जा दिए जाने से बाकी सभी संविधानों के अध्ययन करने के लिए मापदंड के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। सरकारों और संस्थाओं के अध्ययन पर ही बल दिया जाता रहा है। तुलनात्मक राजनीति के विषय वस्तु में आज निम्नलिखित मुख्य विषय शामिल हैं। पहला, सभी राजनीतिक संरचनाएं, ऑल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। तुलनात्मक राजनीति में सभी औपचारिक, अनौपचारिक, सरकारी, गैर सरकारी संरचनाएं जो कि सभी राज्यों में सत्ता के लिए संघर्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रही हैं के अध्ययन को शामिल किया जाता है। यह केवल सरकार के तीन अंगों, विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अध्ययन तक ही सीमित नहीं। इसके अतिरिक्त इसमें नौकरशाही, दबाव समूह और हित समूह, विशिष्ट समूह, राजनीतिक दलों और अन्य सभी संगठनों जो राजनीति को प्रभावित करते हैं के अध्ययन को शामिल किया जाता है। दूसरा, कार्यात्मक अध्ययन, फंक्शनल स्टडीज। तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संरचनाओं और संस्थाओं का केवल कानूनी पक्ष से ही अध्ययन नहीं किया जाता बल्कि उनके द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों और वातावरण में उनकी भूमिका का विश्लेषण भी किया जाता है। इसमें हित स्पष्टीकरण, हित समूहीकरण, राजनीतिक संचार, नियम निर्माण, नियम लागू करना, कानून के अनुसार न्याय करना, समाजीकरण, निर्णय निर्माण, नीति निर्माण आदि प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक प्रक्रियाओं में लोगों के वास्तविक व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। मतदान व्यवहार, राजनीतिक सहभागिता, नेतृत्व भर्ती, विशिष्ट वर्ग व्यवहार, जन राजनीति और लुभावनी राजनीति, दैट इज पॉलिटिक्स ऑफ पॉपुलिज्म आदि तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र के अभिन्न अंग हैं। समानताओं और भिन्नताओं का अध्ययन। तुलनात्मक राजनीति में अलग अलग राजनीतिक संरचनाओं, प्रक्रियाओं और कार्यों में पाई जाने वाली समानताओं और भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, परंतु ऐसा अध्ययन वर्णनात्मक, कानूनी या औपचारिक स्वरूप का नहीं होता। राजनीतिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं की वास्तविक कार्यप्रणाली के अध्ययन के आधार पर समानताओं और भिन्नताओं की वैज्ञानिक व्याख्या, विश्लेषण और तुलना की जाती है। ऐसा करने का उद्देश्य यह बताना नहीं होता कि सबसे उत्तम प्रणाली अथवा संरचना कौन सी है, बल्कि इसका उद्देश्य व्यवस्थित व्याख्या और सिद्धांत निर्माण करना होता है। राजनीतिक प्रणाली का अध्ययन। तुलनात्मक राजनीति पश्चिमी और गैर पश्चिमी राजनीतिक प्रणालियों के कार्यों और वास्तविक व्यवहारों का विश्लेषण करने का प्रयास करती है। राजनीतिक प्रणालियों की संरचनाओं, कार्यों, क्षमताओं तथा कार्य प्रणालियों के आधार पर तुलना और विश्लेषण किया जाता है। यहाँ ऐसा करने का उद्देश्य फिर यह नहीं होता कि कौन सी राजनीतिक प्रणाली सबसे उत्तम है, बल्कि ऐसा करने का उद्देश्य राजनीतिक प्रणालियों की वास्तविक कार्यशैली को समझना होता है ताकि प्राप्त किए गए ज्ञान के आधार पर का निर्माण किया जा सके। अब राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन। राजनीतिक संस्कृति से अर्थ है रुचियों, विश्वासों, भावनाओं और मूल्यों, पसंदों और परंपराओं का समूह जो कि समाज में राजनीति के प्रति मानवीय व्यवहार को निर्धारित करता है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक व्यवहार राजनीतिक संस्कृति द्वारा निर्धारित होता है। राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए आज तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन। राजनीतिक समाजीकरण का अध्ययन। राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया होती है जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपनी राजनीतिक संस्कृति को प्राप्त करता है। यह प्रक्रिया राजनीतिक संस्कृति को बहुत सीमा तक प्रभावित करती है। नौवां, राजनीतिक भागीदारिता का अध्ययन। राजनीतिक भागीदारिता एवं एक सार्वभौमिक तत्व है और यह सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में पाई जाती है। अंतर केवल इतना ही होता है कि कुछ राजनीतिक व्यवस्थाओं में यह बहुत सीमित होती है और कई अन्यों में बहुत विशाल। दबाव समूहों और हित समूहों का अध्ययन। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में कई एक समूह विद्यमान होते हैं। ऐसे कई समूह लोगों के द्वारा अपनी इच्छा अनुसार बनाए जाते हैं ताकि वे इनके द्वारा अपने विशिष्ट और साझी हितों की प्राप्ति कर सकें। ऐसे समूहों को हित समूह या दबाव समूह कहा जाता है। राजनीतिक दलों, विशिष्ट वर्गों और नेतृत्व का अध्ययन। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में सरकार के औपचारिक अंगों से अतिरिक्त जो समूह और संगठन राजनीतिक प्रक्रिया को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं वे हैं राजनीतिक दल, विशिष्ट वर्ग समूह और नेता या नेतृत्व। राजनीतिक व्यवस्था का वास्तविक व्यवहार इन्हीं अनौपचारिक संरचनाओं की गतिविधियों से। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में आज विभिन्न राजनीतिक प्रक्रियाओं, नीति निर्माण प्रक्रिया, निर्माण निर्णय प्रक्रिया, न्याय प्रक्रिया, नेतृत्व भर्ती प्रक्रिया आदि के अध्ययन को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। राजनीतिक व्यवस्थाओं का वास्तविक व्यवहार ऐसी प्रक्रियाओं के द्वारा ही चलता है, इसलिए इन प्रक्रियाओं के तुलनात्मक अध्ययन को तुलनात्मक राजनीति में आवश्यक समझा जाता है। आज तुलनात्मक राजनीति में उन सभी संरचनाओं और कार्यों का अध्ययन किया जाता है जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, धीमी या तीव्र, कम या अधिक रूप में सभी राज्यों की राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित कर रहे हैं। तुलनात्मक राजनीति महत्व। तुलनात्मक राजनीति का विषय उतना ही पुराना है जितना कि राजनीति शास्त्र का अध्ययन। वास्तव में राजनीति शास्त्र के जनक अरस्तु ने राजनीति के सिद्धांतों, मुद्दों और समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए तुलनात्मक ढंग का प्रयोग किया था और राजनीति के सिद्धांतों की रचना करने का कार्य किया था। अरस्तु के पश्चात बहुत से राजनीतिक विद्वान तुलनात्मक राजनीति का लगातार अध्ययन करते रहे। वर्तमान समय में भी राजनीति शास्त्र के विषय के चार आवश्यक पहलुओं में से तुलनात्मक राजनीति को एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में मान्यता प्राप्त है। बहुत से राजनीतिक वैज्ञानिक तो इसे एक स्वतंत्र विषय मानते हैं। हम यद्यपि भारत में तुलनात्मक राजनीति को राजनीति के व्यापक विषय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और आवश्यक अध्ययन क्षेत्र मानते हैं, तथापि अब हम इस विषय की बढ़ती हुई महत्ता, स्वायत्तता वाले स्वभाव और क्षेत्र को समझते जा रहे हैं। आज हम राजनीति को समझने के लिए तुलनात्मक राजनीति को एक महान साधन के रूप में स्वीकार करते हैं। राजनीति के विषय के अध्ययन के लिए तुलनात्मक विधि एक लोकप्रिय और लाभप्रद विधि के रूप सामने आई है। अरस्तु ने 158 ग्रीक नगर राज्यों के संविधानों का अध्ययन किया था ताकि इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर ढूंढे जा सके। आदर्श राज्य कौन सा है? सबसे अधिक व्यवहारिक राज्य कौन सा हो सकता है? अरस्तु के समय अपनाई विधि को उसको चाहने वालों ने भी अपनाया और यह परंपरा वैसे के वैसे आज तक चल रही है। यह बात निश्चित रूप में कही जा सकती है कि अरस्तु के समय से ही राजनीतिक संस्थाओं और सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन खोज के लिए एक विशेष एवं लोकप्रिय क्षेत्र रहा है। अरस्तु के पश्चात कई कई राजनीतिक विचारकों जिस प्रकार की सिसरो, पॉलीबियस, मैकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, जे एस मील और कई औरों ने बहुत उत्पादक ढंग से तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया। 20वीं शताब्दी में तुलनात्मक अध्ययन की परंपरा ने एक निश्चित स्वरूप तुलनात्मक सरकारों का अध्ययन प्राप्त कर लिया जब कई एक राजनीतिक वैज्ञानिकों जैसे ऑग, जिंक, मुनरो, सी एफ स्ट्रॉन्ग, हरमन फाइनर आदि ने इसका प्रयोग और विकास किया। फिर व्यवहारवादी क्रांति के समय कई एक आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिकों जैसे ऑलमोंड, पावेल, ब्लॉन्डेल, कोलमैन, ए आर बल, डेविड एप्टर, मैक्रीडिस, वार्ड और कई अन्यों ने वैज्ञानिक ढंगों का प्रयोग करके और कई एक नवीन धारणाओं को अपनाकर इस विषय का विकास किया तथा तुलनात्मक सरकारों के स्थान पर से तुलनात्मक राजनीति का स्वरूप दिया। वास्तव में वर्तमान समय में तुलनात्मक राजनीति के महत्व में व्यापक वृद्धि हुई है। राजनीति के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक सिद्धांत की आवश्यकता और तुलनात्मक विधि में इस उद्देश्य की पूर्ति की योग्यता होना ही इस विषय के बढ़ रहे महत्व का कारण बना है। संसार में विद्यमान 200 के लगभग राजनीतिक व्यवस्थाओं के अस्तित्व ने तुलनात्मक राजनीति के विषय क्षेत्र को बहुत बढ़ाया है और इसको स्वतंत्र विषय के तौर पर मान्यता प्रदान करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। परंपरागत रूप में तुलनात्मक अध्ययन को राजनीतिक वैज्ञानिकों के द्वारा ठीक तथा तर्कसंगत निष्कर्ष निकालने के लिए और सरकारों और राज्यों के स्वरूपों के अध्ययन के लिए एक बहुत अलग अलग संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन, अलग अलग राजनीतिक संस्थाओं की विशेषताओं, शक्तियों, कार्यों और स्थितियों के अध्ययन संबंधी ठीक और तर्कसंगत निष्कर्ष निकालने के लिए प्रयोग किया गया। इस सभी का मूल उद्देश्य यह रहा कि अलग अलग प्रकार की सरकारों और उनकी राजनीतिक संस्थाओं में पाई जाने वाली समानताओं और असमानताओं को जाना जा सके ताकि बहुत से प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकें। सरकार का कौन सा रूप सबसे उत्तम है? किस प्रकार की राजनीतिक संस्था सर्वश्रेष्ठ है? तुलनात्मक विधि को राजनीति को समझने के लिए और मुख्य प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एक प्रमुख साधन के तौर पर स्वीकार किया गया। बाद में 20वीं शताब्दी में तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। अध्ययन के परंपरावादी स्वरूप ने नया स्वरूप धारण किया। बहुत सी नवीन धारणाओं और दृष्टिकोणों का विकास किया गया। तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययनों के द्वारा राजनीति के एक वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण करने का प्रयास किया गया। तुलनात्मक राजनीति के अस्तित्व में आने के पश्चात कई एक नवीन धारणाओं, दृष्टिकोणों और ढंगों का विकास हुआ और राजनीतिक अध्ययन को एक नया उत्साह प्राप्त हुआ। धीरे धीरे ज्ञान और अनुभव के विकास ने तुलनात्मक राजनीति को एक वैज्ञानिक स्वरूप भी दिया और अध्ययन का एक लोकप्रिय विषय भी बना दिया। तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन का इतना अधिक तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन का विकास हुआ कि बहुत सी राजनीतिक वैज्ञानिकों ने इसको एक स्वतंत्र विषय स्वीकार कर लिया। परंपरागत उद्देश्य अर्थात सबके आदर्श राजनीतिक संस्थाएं स्थापित करने के उद्देश्य के स्थान पर अब एक नया उद्देश्य भरकर सामने आया और वह था राजनीति के वैज्ञानिक सिद्धांत का निर्माण। इसके लिए आवश्यक समझा गया कि कानूनी संस्थागत दृष्टिकोण के स्थान पर व्यवहारवादी, अनुभववादी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया जाए। राजनीतिक संस्थाओं के स्थान पर राजनीतिक व्यवहार एवं प्रक्रिया का अध्ययन किया जाए और विश्व में कार्य कर रही सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन उनकी संरचनाओं, कार्यों, विकास प्रक्रियाओं और उनके वातावरणों के आधार पर किया जाए। अब तुलनात्मक सरकार के स्थान पर तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन लोकप्रिय हो गया और आज भी ऐसी स्थिति ही विद्यमान है। आज तुलनात्मक राजनीति को राजनीतिक अध्ययन का एक बहुमूल्य, लोकप्रिय और लाभप्रद अध्ययन विषय माना जाता है। अब तुलनात्मक राजनीति के विकास का इतिहास। अध्ययन के एक विषय के रूप में तुलनात्मक राजनीति का विषय उतना ही पुराना है जितना कि राजनीति का इतिहास। जब से मनुष्य अपने इर्द गिर्द के वातावरण के प्रति सचेत हुआ और इस वातावरण और इसमें विद्यमान संस्थाओं के अध्ययन की आवश्यकता पैदा हुई, तब से ही उसकी रुचि इस बात में भी बढ़ी कि अलग अलग समाजों में मनुष्य कैसे रहता था, ताकि यह देखा जा सके कि जीवन जीने का कौन सा ढंग दूसरे ढंगों से उत्तम था। इस प्रयास ने ही एक भाग के रूप में राजनीति के विद्यार्थियों को प्राकृतिक रूप से ही अलग अलग समाजों में पाई जाने वाली सरकारों और राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करने के लिए तैयार कर दिया। उनका यह प्रयास तुलनात्मक सरकार का रूप धारण कर गया। समय के साथ साथ यह प्रयास तुलनात्मक राजनीति के संगठित अध्ययन में बदल गया। वर्तमान समय में इसका महत्व बहुत बढ़ गया है, क्योंकि 193 राज्यों के अस्तित्व के कारण अलग अलग राजनीतिक संरचनाओं और कार्यों को समझने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। तुलनात्मक राजनीति के वर्तमान विकसित रूप का अध्ययन करने से पहले आवश्यक है कि हम इस विषय के विकास के इतिहास की जानकारी प्राप्त करें। तुलनात्मक राजनीति के विकास के तीन चरण। तुलनात्मक राजनीति के विकास के इतिहास का अध्ययन तीन चरणों में किया जा सकता है। पहला चरण अरस्तु से 17वीं शताब्दी तक, दूसरा चरण 18वीं और 19वीं शताब्दी तक, और तीसरा चरण 20वीं शताब्दी से लेकर आज तक। पहला चरण तुलनात्मक राजनीति का एक लंबा इतिहास है। इस विषय के पिता कोई और नहीं बल्कि राजनीति शास्त्र के पिता अरस्तु ही हैं। एप्टन और एक्सिन के शब्दों में, तुलनात्मक राजनीति के पास यह दावा करने का अधिकार है कि इसके पूर्वज अरस्तु ने राजनीति को और विज्ञानों से उच्च दर्जा दिया, क्योंकि जिन समस्याओं को उसने उभारा और जो विधियाँ उसने अपनाई वे आज भी राजनीतिक अध्ययन में प्रयोग होती हैं। अरस्तु ने 158 ग्रीक नगर राज्यों के संविधानों का विश्लेषण किया ताकि आदर्श राज्य और आदर्श व्यवहारिक राज्य की पहचान की जा सके, क्रांति के लिए उत्तरदायी कारणों का पता लगाया जा सके और इसके अतिरिक्त उन उपायों की तलाश की जा सके जिनके प्रयोग से क्रांतियों को पैदा होने से रोका जा सके। उसने राज्यों और संविधानों का व्यवस्थित वर्गीकरण उनमें पाई जाने वाली समानताओं और असमानताओं के अध्ययन के आधार पर किया। तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा अरस्तु ने आदर्श राज्य और व्यवहारिक राज्य के संगठन, कार्यों, स्वरूप और गुणों की व्याख्या की। इसकी उसकी अध्ययन विधि तुलनात्मक स्वरूप की थी। अरस्तु ने तुलनात्मक अध्ययन को आरंभ करने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी भूमिका अदा की। रोमन विद्वान पोलीबियस 200 से 120 ईसा पूर्व और सिसरो 106 से 43 ईसा पूर्व ने यूनानी विचारों को रोमन विचारों में शामिल करके तुलनात्मक अध्ययन क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पुनर्जागरण काल में मैकियावेली 1469 से 1527 ने तुलनात्मक विधि को अपनाया। उसकी वास्तविक तथ्यों पर आधारित रचनाओं जैसे द प्रिंस 1513 और डिस्कोरिसिस में रोमन इतिहास पर आधारित तुलनात्मक अध्ययन शामिल रहा। फ्रांसीसी विद्वान जीन बॉदिन ने यूरोपीय राज्यों की सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन किया। पहले चरण में तुलनात्मक राजनीति में अरस्तु द्वारा पहल की गई शुरुआत के पश्चात एक ठहराव सा आ गया तथा फिर मध्यकाल में राजनीति अध्ययन चर्च बनाम राज्य के विषय में ही उलझा रहा। फिर 16वीं तथा 17वीं शताब्दियों में शक्तिशाली राष्ट्र राज्यों का जन्म हुआ और उसके बाद ही तुलनात्मक अध्ययन के विषय में पुनः लोकप्रियता प्राप्त करनी आरंभ की। काफी समय तक यह बना रहा क्योंकि रोमन साम्राज्य की स्थापना ने विभिन्न राज्यों के अस्तित्व को अपने में समेट लिया था तथा राजनीतिक प्रक्रिया एक समान ही हो गई थी। 18वीं और 19वीं शताब्दी में ही तुलनात्मक राजनीति अध्ययन लोकप्रियता प्राप्त कर सका और कुछ सीमा तक अर्थ भरपूर विकास कर सका और इस प्रकार यह दूसरे चरण में दाखिल हो गया। दूसरा चरण 18वीं और 19वीं शताब्दियां, सेकंड फेज 18th एंड 19th सेंचुरीज। विकास के दूसरे चरण में बहुत से राजनीतिक विद्वानों ने तुलनात्मक राजनीति के विकास में योगदान डाला। मॉन्टेस्क्यू 1689 टू 1753 ने कानूनों और राजनीति के अध्ययन के लिए तुलनात्मक विधि को अपनाया। उसने राजनीतिक वातावरण, सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों, तथ्यों का अध्ययन किया। उसने अलग अलग तत्वों के आधार पर राज्यों के वर्गीकरण का प्रयास किया। अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज 1748 में जो निष्कर्ष प्रस्तुत किए वे अलग अलग संविधानों की तुलना पर आधारित थे। 19वीं शताब्दी में जे एस मिल 1806 टू 1873 और ई ए फ्रीमैन 1823 टू 1892 ने न केवल अलग अलग सरकारों और राज्यों की तुलना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बल्कि तुलनात्मक विधि के विकास में योगदान भी डाला। डी टॉकविले की पुस्तक अमेरिका में लोकतंत्र तुलनात्मक राजनीति के विकास में मील पत्थर सिद्ध हुई। राजनीतिक वैज्ञानिकों, समाजशास्त्रियों और अर्थशास्त्रियों ने भी तुलनात्मक राजनीति के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 19वीं शताब्दी के अंत तक पहुंचते पहुंचते राजनीतिक वैज्ञानिकों के मन में मुख्य उद्देश्य यह पैदा हुआ कि तुलनात्मक राजनीति का एक विज्ञान के रूप में विकास किया जाए। 1896 में ए एल लॉवेल ने अपनी पुस्तक गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ कॉन्टिनेंटल यूरोप दो भागों में प्रस्तुत की, जिसमें उसने फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्विट्जरलैंड की राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन प्रस्तुत किया। 19वीं शताब्दी के अंत तक पहुंचते पहुंचते जेम्स प्राइस ने अलग अलग राजनीतिक प्रणालियों की व्यापक अध्ययन का कार्य शुरू कर दिया था। बाद में उसने अपनी पुस्तक आधुनिक लोकतंत्र मॉडर्न डेमोक्रेसीज के द्वारा तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में सकारात्मक और लाभदायक योगदान डाला। इस रचना में उसने 5 राजनीतिक प्रणालियों में पाई जाने वाली विशेषताओं का परंपरागत रूप से तुलनात्मक अध्ययन किया। तीसरा चरण 20वीं शताब्दी से अब तक, थर्ड फेज फ्रॉम 20th सेंचुरी टू द प्रेजेंट। तुलनात्मक राजनीति के विकास क्रम के तीसरे चरण को 2 उपभागों में बांटा जा सकता है, पहला 1945 से पहले का चरण और दूसरा 1945 के पश्चात का चरण। पहला 1945 से पहले का चरण, 1945 से पहले राजनीति वैज्ञानिक अलग अलग राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक प्रणालियों का समुचित रूप में अध्ययन करने पर बल देते रहे। अध्ययन सामान्यतः यूरोपीय देशों पर केंद्रित रहा। इन राज्यों में पाई जाने वाली राजनीतिक संस्थाओं की शक्तियों, कार्यों और गुण दोषों के तुलनात्मक अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया जाता रहा था। FAOG ने यूरोप की सरकारों और WB मुनरो ने यूरोप की सरकारों में इसी आधार पर अलग अलग राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन किया। इन दोनों पुस्तकों ने यूरोपीय देशों की अलग अलग राजनीतिक संस्थाओं का औपचारिक, कानूनी और संस्थागत अध्ययन प्रस्तुत किया। प्रथम महायुद्ध के पश्चात तुलनात्मक अध्ययन पहले से और भी अधिक जटिल हो गया, जब राजनीतिक विद्वानों ने समाजवादी, फासीवादी, नाजीवादी और लोकतंत्रीय राजनीतिक प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन करना शुरू कर दिया। उन्होंने यूरोपीय राजनीतिक प्रणालियों के एक पक्षीय अध्ययन के स्थान पर लैटिन अमेरिका के देशों और एशिया के देशों के तुलनात्मक अध्ययन की ओर अपना झुकाव स्पष्ट कर दिया। उन्होंने अध्ययन विधि के आधुनिक ढंगों को अपनाना आरंभ कर दिया, जिनमें तथ्यों या आंकड़ों का विश्लेषण शामिल होता था। CF स्ट्रॉन्ग की रचना आधुनिक संविधान 1930, हरमन फाइनर की रचना आधुनिक सरकारों के सिद्धांत एवं व्यवहार 1932, जे फ्रेडरिक की रचना संवैधानिक सरकार और लोकतंत्र 1937, EM शेक्ट की रचना राजनीतिक संस्थाएं एक भूमिका आदि ने तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में योगदान डाला। 1945 के पश्चात का चरण, दी पोस्ट 1945 फेस। 20वीं शताब्दी के पहले भाग में विद्यमान तुलनात्मक राजनीति, जिसे तुलनात्मक सरकारों का नाम प्राप्त था, के स्वरूप और विषय वस्तु को संकीर्ण, सीमित, गैर क्रमबद्ध और पक्षपात से परिपूर्ण माना गया। तुलनात्मक राजनीति के ऐसे आदर्शवादी आदेशात्मक स्वरूप, कानूनी संस्थागत दृष्टिकोण, औपचारिक और सीमित क्षेत्र और संकीर्ण अनुभववाद के विरुद्ध एक क्रांति ने जन्म लिया। व्यवहारवादी क्रांति के प्रभाव में बहुत से आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक सामने आए, जिन्होंने वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए तुलनात्मक राजनीति में वैज्ञानिक आधार पर सिद्धांत निर्मित करने का कार्य आरंभ कर दिया। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए व्यापक था, स्पष्ट था और वास्तविकता के उद्देश्यों का होना आवश्यक माना गया। तुलनात्मक राजनीति संबंधी परंपरावादी सोच, जैसा कि राजनीतिक संस्थाओं का उनके संगठनों और शक्तियों के पक्ष में तुलनात्मक अध्ययन की आलोचना की गई। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में कई एक बड़े परिवर्तन आए। राजनीतिक संस्थाओं, कार्यों, राजनीतिक व्यवस्थाओं, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक विकास, राजनीतिक पतन तथा ऐसी ही कई और धारणाओं के आधार पर वैज्ञानिक और अनुभववादी तुलनात्मक अध्ययन किया जाने लगा। तुलनात्मक राजनीति की एक नई शब्दावली और कार्य प्रणाली विकसित होने लगी। तुलनात्मक सरकार के स्थान पर तुलनात्मक राजनीति के विषय का विकास हुआ। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में कार्य कर रही संरचनाओं में विद्यमान समानताओं, विभिन्नताओं और नियमितताओं का अध्ययन किया जाने लगा और इससे प्राप्त ज्ञान की सहायता से तुलनात्मक राजनीति के एक वैज्ञानिक सिद्धांत का निर्माण करने का कार्य आरंभ हो गया। यह कार्य आज भी किया जा रहा है और बहुत भारी संख्या में आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन में व्यस्त।
अगला अध्याय, तुलनात्मक ढंग, कंपैरेटिव मेथड।